कॉल करो 647-384-7300-8436।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 416-792-8792।
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे, और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
तुम घर क्यों नहीं खरीदते?
मेरे लिए आज की मार्केट में घर खरीदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
मैं भी ऐसे ही सोचता था, मगर रॉयल कैनेडियन रियल्टी के जस्टिन जेम्स ने सब कुछ आसान और मुमकिन बना दिया, और देखो आज मेरा घर है।
जस्टिन जेम्स को कैसे कॉन्टेक्ट करूं?
रॉयल कैनेडियन रियल्टी के जस्टिन जेम्स 6476886931, 6476886931।
अब प्रोग्राम हमारी एक बहुत प्यारी यंगस्टर है, बुशरा इनका नाम है, धर्म के इलाके में रमजान के महीने में शी इज डूइंग कंजेक्टिव 6 प्रोग्राम्स, जिसमें बड़ी प्यारी फैमिली है, यानी आप देखिएगा 6 प्रोग्राम होंगे स्कारब्रो में, पिकरिंग में, दोपहर से लेकर रात 1 बजे तक ये प्रोग्राम हुआ करेंगे। इनका एक प्रोग्राम जो पिकरिंग में है वो मैमून सुपरमार्केट में, जो कि 1899 ब्रॉक रोड पिकरिंग में है। इनका एक प्रोग्राम जो है वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर इन स्कारब्रो में होगा। आप बुशरा जी से राब्ता कीजिएगा स्टॉल बुकिंग्स के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। इनके 6 प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम 10 अप्रैल को होंगे, 16 अप्रैल को होंगे, 23 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 30 अप्रैल को और 1 मई को। अच्छा, जो स्कारब्रो में है वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर में 10 अप्रैल और 23 अप्रैल को हैं, और जो पिकरिंग के प्रोग्राम है ये 4 प्रोग्राम है, अप्रैल 16 को है, अप्रैल 29 को है, अप्रैल 30 को है और मई 1 को। ये दोपहर से लेकर रात तक। अगर आप इस इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं ना, तो आप रब्ता कीजिए हमारी इस यंग बच्ची से, इसका नाम है बुशरा कर रही हैं, एंड ये दीवाज जो एक है उसके साथ क्लोथिंग के, ज्वेलरी के अगर आप स्टॉल्स लगाना चाहते हैं तो। अच्छा, यहाँ बेशुमार पार्किंग है, चाहे मेट्रोपॉलिटन सेंटर स्कारब्रो जो कि 3840 फिंच एवेन्यू पे है, या फिर अगर पिकरिंग में आप मैमून सुपरमार्केट का जिक्र कर लें तो यहाँ बेशुमार पार्किंग भी है। इसकी कोई टिकट नहीं है इवेंट की, स्टॉल बुकिंग अगर आप करना चाहते हैं बेशुमार दुनिया ने यहाँ पे आना है, और आप भी जरूर जाइएगा, अपने बच्चों को लेके जाएं। बुशरा जी का नंबर 6472295553, 2295553, और फेसबुक पे और वेबसाइट पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब मैं क्विकली बढ़ूंगी उस आर्टिकल की तरफ। अगेन हरपाल जी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, और ऑफ कोर्स इट्स गुड, मैं हरपाल जी पक्की तौर पे इस गल ते यकीन करनी है, जेड़ा मां दा नहीं वो किसी दा भी नहीं। यू आर अ ग्रेट मैन, आप अपनी मां के साथ हैं, अपनी धरती के साथ हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग, बट वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर, वी आर एज ए कैनेडियन, अब हम इस चोजन कंट्री में वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये अगर आप इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं ना, तो ये सब क्योंकि इमरान खान ने जो कल एक लेटर दिखाया। देखिए मुल्कों की पॉलिटिक्स में तो ये कुछ होता है ना, बिहाइंड द सीन हमारी एजेंसीज तो काम कर रही होती हैं, एजेंसी पाकिस्तान की भी हैं, एजेंसीज इंडिया की भी हैं, एजेंसीज अमेरिका की भी हैं, रशिया की भी हैं और इंग्लैंड की एजेंसीज भी हैं। ठीक, तो एजेंसीज अपने लिहाज से काम कर रही हैं। बल्कि अगर आप बांग्लादेश 71 की वॉर की बात करते हैं ना, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी बयान जाके दे दिया था, जैसे बाइडेन जी ने अब जो बयान दिया है तो वो अपने आप को ही हर्ट कर लिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने मुक्ति बाहमी को उन्होंने बाकायदा के, आप हिस्ट्री को गूगल करके देखें, अगर आप आई कैन टेक इट आउट, ठीक, तो मुक्ति बामी अभी कुछ अर्सा पहले की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि किस तरह मुक्ति बामी को हमने अरेंज किया था और क्या तरीका कार इख्तियार हुआ था। तो ये जो इमरान खान साहब ने लेटर दिखाया, मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहती हूं, और ये इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी ने इसको कवर किया है, बीबीसी ने, अब आपकी मुकम्मल चीजों को कवर कर रहा है बीबीसी, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है। इमरान खान ने, उन्होंने भुट्टो साहब का जिक्र किया है जिन्होंने 45 साल पहले पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक इंतहाई जज्बाती तकरीर की थी। भुट्टो साहब ने 45 साल पहले पार्लियामेंट के इजलास में तकरीर की थी और उन्होंने भी अपनी जेब से एक वर्का निकाल के कहा था, अमेरिका के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे वो भी माजरत। भुट्टो साहब ने जब मुल्क को आजादाना खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की, उनकी खुद जब पाकिस्तान को, अभी भी क्या हुआ, इमरान खान ने गलती क्या की है, यही गलती की कि रशिया के साथ जो उनकी विजिट थी वो पुरानी थी। बाय द वे मैं इस आर्टिकल की तरफ जा रही हूं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, आई वॉच रेगुलरली इंटरनेशनल मीडिया। चाइना के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, चाइना को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो सैंक्शंस लगाए रशिया के लिए। इंडिया ने अभी तक न्यूट्रलिटी रखी हुई है, विच इज अ गुड थिंग, और वो न्यूट्रलिटी रखने पे कायम भी है। कल पहला दिन है कि सीएनएन ने इसके ऊपर सवाल उठाया है कि इंडिया की न्यूट्रलिटी की क्यों बात नहीं करते, सैंक्शंस अगर आप एक तरफ लगा रहे हैं। तो मैं कल की न्यूज आपके साथ शेयर करती हूं, एंड आई फ्लैग्ड इट, मेरे फेवरेट्स के बीच में ये न्यूज है। इंडिया के जो आपके एनर्जी के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि रशिया से जो कॉर्किंग कोल है वो हिंदुस्तान सबसे बड़ा बाय करने वाला है, और जो आपके मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम इस कॉर्किंग कोल की जो अमाउंट है डबल कर देंगे रशिया से इम्पोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सीएनएन ने भी अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया, मगर इंडिया को अभी तक किसी ने टच नहीं किया। चरना अब आज बल्कि यूनाइटेड किंगडम में भी इस पे सवाल उठाया गया कि इंडिया को क्यों प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। ठीक, मगर वो क्वाड्रेट का हिस्सा भी है, वो बात की बात है। कल सीएनएन ने बाकायदा इस पे क्वेश्चन किया है, मगर इट्स गुड, इट्स इंडियाज पॉलिसी फॉर माई कंट्री, लेट मी बी न्यूट्रल। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रशिया के साथ ये दौरा पहले से तयशुदा था, अटैक हुआ, वो वहां मिलने के लिए गए, पाकिस्तान को प्रेशर दिया गया कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। भाई क्यों नहीं न्यूट्रल रह सकते, दिस इज माई फर्स्ट नेबर, चाइना के साथ मेरा नेबर है, आई हैव टू हैव माई ओन पॉलिसी। ठीक, एनी वेज मैं आई डोंट वॉन्ट टू जस्टिफाई, क्योंकि किसी पॉलिटिशियन ने मुझे कुछ नहीं देना। मगर अब इमरान खान साहब ने अपने जलसे में जब जिक्र किया भुट्टो साहब ने, अब भुट्टो साहब की दो चीजें गलती, एक गलती क्या थी उनकी कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आबद बट एक लाहौर में, मैं मॉडल टाउन से हूं, मैं नहीं, मैं मेरे माँ बाप मॉडल टाउन डी ब्लॉक से थे, मुजफ्फर अली 141 सी में रहते थे और 142 सी में आबद बट नहीं था, इसका नाम था सेठ आबद का घर था। ठीक है, और ये जो चीजें लेके आए थे, अब मुझे तो वो कहानियां बड़े ही उस जमाने में सुनाया करते होते थे कि किस तरह गाड़ियों के बीच में ये चीजें लेके, ये भुट्टो साहब के दौर की बात मैं आपसे कर रही हूं। तो भुट्टो साहब ने एक तो ये कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया था, उससे पहले हिंदुस्तान अपना न्यूक्लियर तजुर्बा कर चुका था। दूसरा भुट्टो साहब की गलती क्या थी कि वो पाकिस्तान को आजाद खारजा पॉलिसी देना चाहते थे। ठीक, ان کی خودداری ہمیشہ مطلب خوددار پسند تھے. فضل الرحمان اور نواز شریف کی اس وقت کی پارٹیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, یہ بات ہے جس کے بعد پھر ٹیک اوور کرتے ہیں آپ کے ضیاء الحق صاحب ٹیک اوور کرتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کی ظاہر ہے ان کی سرکردگی میں انہوں نے اپنی سیاسی پرورش ہوئی. فضل الرحمان تب بھی تھے. کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے اگینسٹ فضل الرحمان جو آج بھی بڑے ایکٹیو ہیں, اور نواز شریف صاحب جو کہ انڈر ضیاء الحق. اچھا, آرمی جنرل سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, ظاہر ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریف کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے. اب یہ جو بات چیت انہوں نے کی تھی وہ پارلیمنٹ میں کی تھی, پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے. اس کی وجہ بتاتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے, اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ساتھ دینے, جس نے ویتنام کا ساتھ نہیں دیا, ویتنام میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, اگینسٹ دا ونڈ چلے, اگینسٹ دا واٹر فلو چلے, ظاہر اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی. ایک گھنٹے اور 45 منٹ کی سپیچ تھی, اور اس سپیچ میں بھٹو صاحب نے ایک لفظ اور جو بڑا سٹرانگ ورڈ استعمال کیا وہ تھا کہ امریکہ کو ایک ہاتھی قرار دے دیا جو بھولتا ہے اور نہ معاف کرتا ہے. یہ بھٹو صاحب کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں. بقول بھٹو, امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی این اے پاکستان نیشنل الائنس, 9 پارٹیوں کا الائنس بنا تھا, بعد میں جوتیوں میں دال بٹی تھی. جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کیا. اس کے بعد بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا. عدالت میں اپنے بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا, بھٹو صاحب نے اب عدالت میں پہلی دفعہ جب انہوں نے سپیچ کی تھی تو پارلیمنٹ میں ایک گھنٹہ 45 منٹ کی سپیچ کی تھی, اس کے بعد جب عدالت میں مقدمہ چلا تو عدالت میں بھٹو صاحب نے, اینڈ اٹس ان دا ریکارڈ, عدالت میں بھٹو صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عزم کر لیا تھا, اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہنری کسنجر نے انہیں دھمکی دی, تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا. امریکی وزیر خارجہ کا, یعنی ہنری کسنجر اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ تھے, ان کا یہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے, اور پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت بڑا کردار ہے. تاہم اس کے گواہ اس وقت تو صرف ذوالفقار علی بھٹو تھے, مگر اب صاحب کیا ہوا کہ ایک اور شخص کا نام آیا. بھٹو اس نقطے پر پاکستان کے عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کی, بہت دیر ہو چکی تھی. کئی مقامات پر انہوں نے ہنری کسنجر کے جو یہ دھمکی تھی اس کو دہرایا بھی. انہوں نے اپنے مقدمے لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے, جس کی سربائی راہی مولوی مشتاق کر رہے تھے, یہ بات بھی کہی کہ انہیں امریکی وزیر خارجہ, انہوں نے تو نام لے دیا تھا کہ ہنری کسنجر نے, اب کہنے والا یہ سمجھ سکتا ہے تو بھٹو صاحب تو آج دنیا میں نہیں رہے, تو بھٹو صاحب اور ہنری کسنجر کے درمیان تھا, مگر نہیں صاحب اس کی ایک شہادت موجود ہے. ہنری کسنجر کے اس جملہ کیا تھا کہ تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے, کسی آزادانہ ذرائع سے تصدیق تو نہیں ہوئی, لیکن اسلام آباد میں, اس وقت میں اسلام آباد کے جو امبیسی میں ڈپٹی چیف مشن جیرلڈ فیورسٹین ان کا نام تھا, آپ اس کو گوگل کر کے دے سکتے ہیں, بلکہ ہمارے پاس ڈان کا ایک آرٹیکل نکلا ہے اسی حوالے سے, میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لیتی ہوں. ہم نے جب ہسٹری کو کھنگالا تو ہمارے پاس ڈان کا ایک آرٹیکل نکلا ہے, میں ابھی اس کا نام آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتی ہوں. ڈان کا جو آرٹیکل نکلا ہے, لیٹ می شیئر دیٹ آلسو, آئی ایم سو سوری, آئی ول ٹیک لٹل ٹائم. ڈان کا آرٹیکل ہے جس کا نام ہے اے لیف فرام دا ہسٹری, کسنجر کمز ٹو ٹاؤن, ڈان میں ہے. میری کوشش ہے کہ میں اس آرٹیکل کو ود کرٹسی آف ڈان انگلش پاکستان سے ہم اپنی اس کی ویب سائٹ کے اوپر لے کے بھی آئیں. آئی جسٹ ریکویسٹڈ مائی ٹیم, کرٹسی آف ڈان, لیف فرام دا ہسٹری, کسنجر کمز ٹو ٹاؤن. ہنری کسنجر کے اس جملے کو خوفناک کے بھٹو صاحب کو انہوں نے کہا تمہیں خوفناک مثال بنا دیں گے. یہ آرٹیکل میں विद द कर्टसी ऑफ डॉन हम पोस्ट करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। मगर वो कहते हैं उस वक्त के जो डिप्टी चीफ मिशन जेरल्ड फ्योरिस्टन थे, अप्रैल 2010 में पाकिस्तान के मीडिया को उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था, शायद डॉन के इस आर्टिकल में ये मौजूद भी हो, इस मीटिंग के यानी शायद थे वो। उन्होंने कहा कि वो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर की हैसियत से 10 अगस्त 1976 को लाहौर में होने वाली मीटिंग के एनी शाहिद थे। इंटरव्यू ये देते हैं अप्रैल 2010 में, मीटिंग हुई थी अगस्त 1976 में मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अप्रैल 2010 में, वो फरमाते हैं कि जो मीटिंग हुई थी 10 अगस्त 1976 में, मैं उस मीटिंग में एनी शाहिद। इसमें भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करने के बारे में हेनरी किसिंजर की वार्निंग को मुस्तरद कर दिया था। ये जो उस वक्त के डिप्टी चीफ थे जेरल्ड फ्यूरिस्टन, उन्होंने एक मुकामी टेलीविजन को भी इंटरव्यू में कहा था, अब इसकी पिक्चर भी हमारे पास मौजूद है जिसमें जॉन फ्यूरिस्टन मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी मंसूबे पर तश्वीश थी जो कि इंडिया की एटमी सलाहियत की बराबरी करने के मुतरादिव था, इसलिए हेनरी किसिंजर को भेजा गया था कि भुट्टो को खबरदार करें। ये वो तस्वीर थी जिसमें हेनरी किसिंजर भुट्टो साहब के साथ बैठे हुए थे, इसमें जेरल्ड फ्यूरिस्टन भी इस मीटिंग में मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इसका एनी शाहिद हूं। ये दुरुस्त है कि भुट्टो ने इस वार्निंग को मुस्तरद किया था और एटमी प्रोग्राम को जारी रखा। इसमें एक प्रोटोकॉल ऑफिसर जेरल्ड फ्यूरिस्टन कहते हैं कि मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर था। जब अगस्त 1976 में हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए थे और भुट्टो साहब से मिले थे, जेरल्ड फ्यूरिस्टन ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि उस वक्त अमेरिका में इंतखाबात करीब थे और डेमोक्रेट्स को जीतना था और वो यकीनन ये चीज को लेना चाहते कि हाँ हमने पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को रोक दिया। अपने इंटरव्यू में जेरल्ड फ्यूरिस्टन ने भुट्टो को अपनी कमजोरियों के बावजूद पाकिस्तान का सबसे बासलाहियत, जहीन और काबिल सियासतदान करार दिया, मगर मरवा दिया। एक भुट्टो साहब की बात को छोड़िएगा, बेशुमार और लोग मरे। मिसाल के तौर पर 183 मेमोरेंडम ऑफ कंसोर्शियम में 31 अक्टूबर 1974 में इस्लामाबाद में अमरीकी और पाकिस्तानी सफारतकारों की मौजूदगी में भुट्टो और किसिंजर के दरमियान होने वाली मुलाकात में किसिंजर अमरीकी काश्तकारों का जिक्र करते हैं। अब यहां पर आप सुनिएगा, वो कहते हैं कि अमेरिका में गंदम का, आपको याद होगा थोड़ा सा अगर आपने तारीख की तरफ लेके जाएं तो सऊदी अरेबिया में गंदम की काश्त बहुत ज्यादा होती है। सऊदी अरेबिया को कहा गया था कि वो अपनी सारी की सारी गंदम को दरिया समंदर बुर्द कर दे। अगर आप याद करें तो सऊदी अरेबिया ने अपनी गंदम को समंदर बुर्द कर दिया था क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हमारे काश्तकारों की जो आप हमसे इंपोर्ट करें, गंदम हमसे इंपोर्ट करें। पाकिस्तान पे भी यही प्रेशर आया कि आप गंदम हमसे खरीदिएगा। किसिंजर कहते हैं कि अमरीकी काश्तकारों को मुल्क में इजाफी पैदावार के माहौल में अपनी अशिया एक फ्री मार्केट में बेचने की आदत है, उस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं और मुल्क में वसायल को मुख्तस करने का मसला। तो भुट्टो कहते हैं मुझे याद है कुछ अर्सा कबल गालबन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ माहरीन ने मुझे मशवरा दिया था कि पाकिस्तान को गंदम की पैदावार में इजाफे को छोड़कर आप सनती पैदावार करें, गंदम न पैदावार करें, गंदम आप अमरीका से इम्पोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि अमरीका में हमेशा गंदम की इजाफी पैदावार होगी और अमेरिका पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा करेगा। अब जेरल्ड फ्यूरिस्टन 90 वो फरमाते हैं, उसके अलावा एक और शख्स जिसका मैंने आज प्रोग्राम में जिक्र किया, जनरल रामसे क्लार्क जो हैं, जब अटॉर्नी जनरल, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल, ना सिर्फ ये कि उन्होंने वहां से राबता किया, ही पर्सनली केम फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, मगर उस वक्त के जनरल जियाउल हक ने उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से रोक दिया गया था। वो लड़ना चाहते थे, भुट्टो का मुकदमा लड़ना चाहते थे और इस सिलसिले में पाकिस्तान गए थे, लेकिन जनरल जियाउल हक ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। अब अगर आप ये क्लिप देखें, और ये पाकिस्तान के किसी अखबार का नहीं है, इस थोड़ा सा ऊपर जाओ 93 की एज में रामसे क्लार्क का, एक्स यूएस अटॉर्नी जनरल रामसे क्लार्क होल प्ली हुज प्ली टू डिफेंड अंडर ट्रायल जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज डिनाइड, ہی ڈائیڈ ایٹ ایج 93. یہ یہاں کے اخباروں نے اس کو چھاپا تھا. اب اس کے نیچے, تصویر کے نیچے جو ہیڈنگ ہے, رامسی کلارک جو ہے وہ کہتے ہیں نیو یارک اپریل 11, رامسی کلارک ا فارمر یو ایس اٹارنی جنرل ہو وینٹ ٹو پاکستان 1976 ٹو ڈیفینڈ انڈر ٹرائل ذوالفقار علی بھٹو بٹ واز پریوینٹیڈ بائی دا پریزیڈنٹ ضیاء الحق رجیم فار اپیئرنگ ان دا سپریم کورٹ. ٹھیک, تو یہ علی وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وہ مارچ 1968 میں پاکستان پیپل پارٹی کی ہفتہ روزہ نظریاتی جزریہ, ایک شخص ہے جو ان کے بارے میں لکھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جمی کارٹر دو باتوں پر پاکستان کے خلاف تھے. جمی کارٹر, ایک تو ایٹمی پروگرام, دوسرے انسانی حقوق کی صورتحال. وہ جمی کارٹر کہتے تھے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس صحیح نہیں ہیں, جس کے جواب میں اب جمی کارٹر یہ دو باتیں کہتے تھے, ایک تو آپ نیوکلیئر پروگرام نہ بنائیں, ایک آپ کے ملک میں ہیومن رائٹس نہیں. اس کے جواب میں بھٹو صاحب نے کہا, میں اپنے ملک کی خاطر, پاکستان کے عوام کی خاطر اس بلیک میلنگ اور دھمکی کو نہیں مانوں گا. ٹھیک, اس سے پہلے 1974 میں ہندوستان نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے ایٹم بم کا تجربہ کیا تھا, تو بھٹو نے ہنری کسنجر سے اپنے خدشات اور تحفظات کا ذکر کیا تھا, پاکستان کی سالمیت اور بقا کے خطرے کی بات کی تھی, جس کے جواب میں ہنری کسنجر نے کہا تھا جو ہونا تھا ہو چکا, اب پاکستان کو اس حقیقت کے ساتھ جینا ہوگا کہ پاکستان کا ہمسایہ ایک اٹامک کنٹری ہے. تو بھٹو صاحب نے تہیا کر لیا کہ ہم بھی پاکستان کو اٹامک پاور بنائیں گے. 1965 کی جنگ کے بعد بھٹو صاحب کے ایوب خان سے اختلافات ہوئے. 1965 میں وہ ویانا گئے. ڈاکٹر منیر احمد انٹرنیشنل اٹامک انرجی سینئر پوزیشن میں تھے. بھٹو صاحب سے کہا کہ انڈیا نے اپنے جوہری پروگرام کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی تیاری شروع کر دی. اس وقت سے ہی جوہری منصوبے کا بھٹو صاحب نے اپنا ذہن تیار کر لیا تھا. کمپرس تھے. ٹھیک, اب اگر آپ مرنے مرانے کی بات کرتے ہیں نا, تو کس کس کو نہیں مارا گیا. جس شخص نے بھی اپنے ملک کی بات کی اس کو مروا دیا گیا. ٹھیک, یہ تو ایک صورتحال تھی. وہ 1971 کی جنگ امریکہ نے انڈیا کو ڈرانے کے لیے بجنگی بڑھا. یہ ایک پیراگراف ہے جس کو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہتی ہوں. جس روز بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا, جس میں 1 گھنٹہ 45 منٹ کا خطاب کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ تمہارا انجام بڑا خوفناک ہوگا, امریکہ پر الزام لگایا کہ ان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس کے غالباً دوسرے روز ڈاکٹر سعید شفقت پنڈی میں ایک ریسٹورینٹ کی طرف جا رہے تھے, جہاں ایک صاحب نے ہمیں چائے کی دعوت دی ہوئی تھی. ہم صدر میں پیدل ہاتھی چوک سے ایڈورڈ روڈ کی طرف جا رہے تھے. اچانک ہی بھٹو صاحب وہاں پہنچ گئے اور اپنی کار سے باہر نکلے, مجھ سے میرا حال پوچھا. اتنے میں انہیں دیکھ کر وہاں لوگ جمع ہو گئے. بھٹو صاحب نے وہاں چھوٹی سی تقریر کی, اور اس تقریر میں انہوں نے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ سائرس فینس کا ایک خط بھی لہرایا, جس میں بھٹو صاحب کو ایک مرتبہ پھر دھمکی دی گئی تھی. سیکنڈ خط لہراتے ہوئے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھو, مجھے ہی خطرہ نہیں بلکہ پاکستان کو خطرہ ہے. یہ علی جعفری جو اپنی یادداشتوں کو ریوائز کرتے ہیں, کہتے ہیں بھٹو صاحب بتاتے پھر رہے تھے کہ خدا کے لیے اس تحریک کو سمجھو. اس کے علاوہ بھٹو کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ انہوں نے 1974 میں اسلامی ممالک کے, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کو اگر یاد ہوگا, اگر آپ اگین میں ڈان کا ہی وہ پیج کی طرف لے کر کے جانا چاہتی ہوں, الیف فرام دا ہسٹری, اف یو لک ایٹ دس لیف فرام دا ہسٹری, ایک ورق پلٹ کر دیکھیے گا. بھٹو صاحب کی ایک اور غلطی جو تھی, اس نے اسلامک سمٹ کروائی تھی, اور اس وقت کے جو سعودی عربیہ کو تو اس وقت نیند سے آنکھ ہی نہیں کھلی تھی سعودی عربیہ کی. انہوں نے کہا تھا, آج رشیا یہ کہتا ہے کہ روبل میں اپنی جتنی ٹرانزیکشن کروں گا, میں کسی بھی اگینسٹ کنٹری کے پیسے میں نہیں کروں گا, میں روبل میں کروں گا. ٹھیک ہے, رشین کرنسی میں. تو بھٹو صاحب نے تب فرسٹ ٹائم ایک ٹرم انٹروڈیوس کی تھی, بلیک گولڈ. بلیک گولڈ کیا تھا کہ سعودی عربیہ اور عرب ممالک کے پاس تیل تھا, او تیل. اب اگر آپ ساتھیوں کو یاد کریں, ان میں سے کون سا ساتھی اپنی طبعی موت مرا؟ ایک بھی نہیں. بھٹو صاحب از انکلوڈیڈ. 1974 میں اسلامک ممالک کے اہم رہنماؤں کو اکٹھا کیا, اسلام آباد میں کانفرنس کی, جو قراردادیں منظور ہوئی, مسلم دنیا کی اپنی کرنسی ہو, وچ واز انایکسپٹیبل. ناؤ اب रशिया कह रहा है कि मैं रूबल में, आज यूनाइटेड किंगडम की एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि दो काम कर ले रूस तो हम सारी सैंक्शंस उठा लेंगे, सारी सैंक्शंस उठा लेंगे। ये न्यूज मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, मेन स्ट्रीम के न्यूज मीडिया पे पड़ी है। यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि हम सारी सैंक्शंस उठा लेंगे, नंबर एक कि वो अपनी आर्मी को रिट्रीव कर ले, पीछे चला जाए, और नंबर दो ये जो रूबल में ट्रांजैक्शन का कह रहा है इससे पीछे हट जाए। तो भुट्टो साहब की गलती क्या थी, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम ममालिक की अपनी करेंसी हो, अपनी पार्लियामेंट हो, तेल की कीमतें और मुसलमान ममालिक खुद तय करेंगे। यकीनन बाज ममालिक की ये चीजें कबूल नहीं थी। अगेन मेरा और आपका बाखबर रहना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर का। शाजी जी मेरे साथ होंगी, डॉक्टर नाजिया रहमान का मैंने जिक्र कर दिया, किंग वेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री का जिक्र करना चाहती हूँ। हैमिल्टन में ये डेंटल क्लिनिक है, अगर आप अपने दांतों का इलाज कराना चाहते हैं। बच्चों के लिए स्माइल्स ऑन्टेरियो का प्रोग्राम है 288 किंग स्ट्रीट वेस्ट में, और अगर आप फर्स्ट टाइम टूथ क्लीनिंग के लिए जाते हैं तो $99 का जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश है वो आपको तोहफे में दिया जाता है। किंग वाइस स्माइल डेंटिस्ट्री 9055210540। आज मंडे है, ग्रिल एंड चिक पे आज जो उनका बन है जो बड़ा कमाल का वेरी डिलिशियस फिले क्या मुर्गे की ब्रेस्ट, जो चिकन ब्रेस्ट फिले ग्रिल एंड चिक के ऊपर आज 16 माउंट पेलियर स्ट्रीट, ये साहब वही मिसेस सागर रोड के ऊपर। पहले तो मैं 407 लेके जाती थी, मैंने कहा $2 की बचत के खातर $15 का मैं टोल पा लेनी है, तो अब तो मैं अपने घर से निकलती हूँ इतनी दूर अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े, आई टेक सीधी स्टील्स लेके पहुंच जाती हूँ। आज बड़ा मजे का स्क्यूर्स ट्राई कीजिएगा, चिकन ब्रेस्ट इतनी बड़ी रज के आपका दो बंदे खा सकते हैं, ये जो सिंपल चिकन ब्रेस्ट है, साथ में आप गार्लिक ब्रेड लीजिए, साथ में आप फ्राइज लीजिएगा, ताज़ा ताज़ा सैलड लीजिएगा, और जाना होगा ग्रिल एंड चिक 9054560500। रमजान के दिनों में हमारे स्पॉन्सर होंगे नगेट मस्जिद को दिल खोल के सपोर्ट कीजिएगा। नगेट मस्जिद ओवरहेड्स हैं, बच्चों का स्कूल है, इस्लामिक स्कूल है, 12वीं जमात तक स्कूल है, जहाँ पे हमारे माजिद भाई के बच्चों ने भी वहीं से पढ़ा, गवर्नर जनरल अवार्ड लिया था। या आप जरा गूगल करके देखें स्कूल का रेटिंग क्या कमाल की है। तो रमदान इस्लामिक फाउंडेशन इनका नाम है, और वो हमारे स्पॉन्सर होंगे इन द मंथ ऑफ रमदान। अभी तैयार रहिएगा, शाजिया जी विल बी विद अस एनी मिनट फ्रॉम नाउ।
Spirit became menswear. Three elements that represent the brand, fit, quality and value. Only South Asian owned men's custom sweating and shirting company in Canada. Fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compared to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss. 100% Italian wool suit starting from $2.99. 100% Egyptian cotton shirt starting from $29.99. Chinos, Mariano, wool sweaters, denim jeans, corduroy shirts, trousers and more. Visit today, 1535 Merseyside Drive, Unit 19. 20 Mississauga. Call 905-670-3388.
Teletime Electronics LEDs और Home Appliances की Hottest और Branded Range के साथ 0% Finance Guarantee on Lowest Prices और Free Delivery in GTA. तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें Teletime Brampton 280 Rutherford Road या Springdale Square Shopping Center या Etobicoke 1770 Albion Road या 9909 Markham Road. मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 905-455-1666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196
Kothra Road, Mississauga. जी साहब, वेलकम बैक अगेन, एंड शादी जी बहुत जल्द हमारे साथ शामिल हो जाएंगे यहाँ पर। उस वक्त तक मैंने सोचा कि जैस्मीन परमार से आपकी मुलाकात करवा दूं। चलिए साहब, मॉर्गेज की दुनिया में क्या हो रहा है, जैस्मीन परमार मेरे साथ शामिल है। जैस्मीन जी, वेलकम टू रेडियो साज़ो आवाज़, हाउ आर यू?
I'm good, Abhaji ji, how are you?
Not bad at all. तो बताइए मॉर्गेज की दुनिया में क्या हो रहा है?
हाँ जी जरूर माजी जी. सो बेसिकली माजी जी, टुडे वी वांटेड टू टॉक अबाउट अ रियली रियली ग्रेट प्रोडक्ट दैट वी हैव. सो यू नो देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट बेसिकली स्पेशली हमारे इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स के लिए, या जो क्लाइंट्स यू नो इस बिजनेस में है, जो प्रॉपर्टी लेके यू नो उनको रेनोवेट करके उसको फ्लिप करते हैं, एंड दे आर एक्चुअली इन टू दिस बिजनेस and they're always looking for the consistent mortgages, and they don't want to go through the ill and the bill, and they're paying for the going through the whole process, and they're always looking for the quick close. So I wanted to basically talk about the really really great product that we have, which is a private mortgage product. So hamare paas private mortgage product mein hamare paas jo mortgages hain, they are starting at 3.99, which is an amazing interest rate for our clients. और इसमें आपके पास जो टर्म्स हैं वो 6 months फुली ओपन टर्म्स है, जिसमें आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगती. अगर आप इस टाइम कोई मॉर्गेज के बारे में देख रहे हैं, आपको यू नो किसी भी अपनी क्लिपर इन्वेस्टमेंट या यू नो फिक्सर अपर के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए, आपको क्विक क्लोज चाहिए यू नो, और टर्म भी है जो स्मॉल टर्म चाहिए, एंड यू डोंट वांट टू गो टू द ए लेंडर एंड अ बी लेंडर, यू जस्ट वांट टू गेट इट डन. आप यू नो प्रॉपर्टी को लेके उसको रेनोवेट करके उसको ठीक करके उसको आप फ्लिप करना चाहते हैं, आपको शॉर्ट टर्म मॉर्गेजेस चाहिए, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज वेरी वेरी कंपेरेटिव एंड वेरी ग्रेट इंटरेस्ट रेट, विच इज आई सेड स्टार्टिंग एट 3.99, और इसकी टर्म भी जो है फुली ओपन है, सो दैट्स एन अमेजिंग रेट. सो अगर आप, और सेकेंडली हमारे पास सेम ही हमारे काफी सारे अच्छे लेंडर्स हैं जिनके पास सेकेंड मॉर्गेजेस के भी हमारे पास रेट हैं स्टार्टिंग एट 6.99. सो अगर आपको सेकेंड मॉर्गेज की जरूरत है फॉर डेट कंसोलिडेशन एंड यू आर लुकिंग फॉर लाइक अ लो इंटरेस्ट रेट मॉर्गेज, दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट फॉर यू. अगर आपको पता है कि आपकी लोन टू वैल्यू स्मॉल है एंड यू डोंट वांट टू पे सच अ हाई इंटरेस्ट रेट, आप अपने क्रेडिट कार्ड के डेट कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आप पैसे उठाकर प्राइवेट मॉर्गेज को अपने क्रेडिट कार्ड के डेट लाइन ऑफ को पे ऑफ करके अपना कैश फ्लो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सेकेंड मॉर्गेज रेट ऑल्सो स्टार्ट 6.99 एंड देर ऑल्सो फुली ओपन टर्म्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर आर क्लाइंट. सो अगेन, आपको अगर किसी भी तरह की प्राइवेट मॉर्गेज के लिए आपको कुछ भी यू नो आपको वेदर यू हैव अ रिक्वायरमेंट और यू हैव अ क्वेश्चन कि अगर आपको प्राइवेट मॉर्गेज चाहिए क्या आपको बेस्ट इंटरेस्ट क्या टर्म्स एंड कंडीशन मिल सकती हैं, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अदर देन दैट, आवर लिसनर्स नो वी बेसिकली स्पेशलाइज इन ऑल टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल मॉर्गेजेस, वेदर इट्स अ परचेज, वेदर इट्स अ रीफाइनेंस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, सेकंड होम. यू कैन गिव अस अ कॉल एट 647-923-5659. हमारा ऑफिस जयंतर में है ऑन द मेजर इंटरसेक्शन ऑफ एयरपोर्ट रोड एंड क्वीन स्ट्रीट. अगेन यू कैन गिव अस अ कॉल एट 647-923-5659.
6479235659 जैस्मिन का फोन नंबर है. एंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग चाहे वो कमर्शियल की हो चाहे रेजिडेंशियल की हो, आप गिव अ कॉल प्लीज. थैंक यू सो मच जैस्मिन.
थैंक यू सो मच माजी जी. थैंक यू सो मच.
थैंक यू जैस्मिन से मैंने आपकी बातचीत करवाई. और अब क्या करेंगे लीजिए साहब, हमारे पास कुछ करने को ही नहीं है. नहीं साहब, है बहुत कुछ. शहजाद मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर. पहले जरा इंट्रो हो जाए. ये म्यूजिक सुन के आप भी ऐसा कर रहे होते हैं इतना के घोड़े में भाग रहे. एनीवे, वेलकम बैक अगेन. एंड अब न्यूज के सेगमेंट की तरफ ले चलेंगे और शाजिया मलिक जी मेरे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
आपने जो भी काम ने पहना है ना,
हाँ जी, इट इज
अमेजिंग.
खतरे में ना के
मारना चाहिएगा कोई, कहेगा दे दो.
अच्छा अच्छा, हाँ. नहीं कोई बात नहीं, ये दिस इज कॉस्ट्यूम ज्वेलरी. सो
उसको दे दे क्यों आ रहा है? ला
ला ला यार, ला ला चल दो मर
बहुत पहन लिया मैं.
ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਖੈਰ
ਠੀਕ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਕਾ ਦਿਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ
ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਬੰਦੂਕ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਹਮ ਕੌਨ ਸਾ ਬੰਦੂਕ ਸੇ ਡਰਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਪਿਸਤੌਲੀ ਸੀ ਲੇਕਰ ਆਇਆ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਤੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਫੇ ਵੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਡਰਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲੀਓ ਸੇ
ਹਾਂ ਤੋ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਤੋ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ
ਮੋੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਰੀਅਤ ਸੇ ਆਪ
ਬਖੈਰ ਹੈ ਜੀ
ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰ ਹੈ ਆ ਗਏ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਹਜ ਵਜ ਕਰਕੇ ਉਮਰਾ ਸ਼ੁਮਰਾ ਕਰਕੇ
ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬੈਕ
ਮੈਂ ਬੈਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੇ ਮਾਜਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਕੇ ਘਰ ਕੇ ਨਾ ਨੇਕ ਕਿਸਮ ਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨੇਕ ਹੀ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜੋ ਥਾ ਨਾ ਉਸਕੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਥੀ ਉਸਨੇ ਉਸਕੋ ਕਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਨੇਕੀ ਔਰ ਨਾਕਨੇ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜ਼ਰਾ ਨੇਕ ਥਾ ਨਾ ਆਪਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਆਪਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਥਾ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਝੇ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇਕੀ ਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰਫ ਉਹ ਡਿਸਕੋਸ਼ਿਸ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਚਨੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੋ ਉਹ ਉਮਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
ਹਾਂ ਤੇ ਨੇਗੀ ਕੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਿਆ ਤੋ
ਉਸਕੇ ਬਾਪ ਨੇ
ਕੀ ਕਹਾ ਫਿਰ ਉਸਕੋ
ਬਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ
ਸਰ ਪਕੜ ਲਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲੈ ਬਈ ਇਸਕੋ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੁਝ ਮੌਲਾਨੇ ਐਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਮੌਲਾਨੇ ਆਏ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੌਲਾਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਮੇ ਆਪ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਂਗੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਮੁਝੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕਾ ਪੈਗਾਮ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤਨੀ ਬੈਦਲ ਗਈ ਹੈ ਮਾਜਦ ਭਾਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ
ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ
ਇਹ ਮੌਲਵੀਓ ਕੋ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੇ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਥਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਤਾ ਹੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸਕੀ ਲੋਗੋ ਕੋ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੂਥ ਹੈ
ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਹੈ
ਹਾਂ
ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸਕੇ ਲਈ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਾ ਥਾ ਹਮਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਵੀ ਬਾਤ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇ ਜਾਏਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਦੇਖੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਮਾਜੀ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀਕੈਂਡ ਪੇ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁਆ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸਨ ਹੈ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਔਰ ਇਹ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਉਨਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਉਨਕੋ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਟੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਜਨਤੀ ਟੂਡੋ ਕੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਮ ਆਪਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤੇਂ ਕੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਫਿਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਵੀ ਕੀ ਤੋ ਜੋ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਆ ਥਾ ਵੀਕੈਂਡ ਕੇ ਉਪਰ ਇਵੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਆਪ ਇਸਕੀ ਕੁਛ ਅਗਰ ਜੋ ਵੋ ਲੋਕ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਕੋ ਹੋਸਟ ਕੀਆ ਥਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇਨਕੋ ਜੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾ ਤੋ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਥੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਬਾਤ ਕੀ ਥੀ ਜੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਯੂ ਨੋ ਅ ਕਾਲ ਅਵੇ ਔਰ ਇਹ ਤੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਆਪਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਸਕਤੇ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਥੇ ਵੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਮਸਜਿਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੇ ਆਏ ਥੇ ਯੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੇ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਹਮੇ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਟੀ ਏ ਕੇ ਅੰਦਰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਮੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਤੋ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੇ ਕੋਈ ਆਪਕੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਹਮੇ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਦਿਸ ਵਾਜ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਬਾਏ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਥਾ ਜੋ ਹਮਨੇ ਕਵਰ ਕੀਆ ਥਾ ਵੀਕੈਂਡ ਕੇ ਉਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦੇਤੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮੇ ਹਮਨੇ ਡਾਲੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੇ 1.28 ਪੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੀ ਤੋ ਦੇਖੇ ਜੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਮਾਜਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਡਿਫੀਟ ਕੀਆ ਜਮੈਕਾ ਕੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਯੈਸ 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 ਤੋ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਕੁਛ ਵੋ एडवर्टाइजर्स, तो आप प्लीज उनको जरा पीआर दिखाएं, ठीक है जी। तो ये है हमारी वेबसाइट की खबरें, और मजद भाई इसके अलावा हम जो है आपको बता रहे हैं कि बड़ी प्यारी एक प्रमोशन आ गई है इस स्प्रिंग की, है जी। ये है जी रोना और लोज की, ये स्प्रिंग फेस्टिवल है इनका, और ये कह रहे हैं जी कि जितना भी आप लोज और रोना के स्टोर्स जो हैं यहाँ पे मार्कम, स्कार्ब्रो और ब्रैम्पटन में, इसमें अगर आप कोई स्प्रिंग से रिलेटेड चीजें लेंगे तो आपको 30% तक की छूट आपको मिलेगी। तो वो कह रहे हैं आप अपने, अगर अपने गार्डन को जो है इस बहार में दिखाना है कि आपके गार्डन में भी बहार आ गई है, तो आप लोज और रोना का स्टोर जो है ये इन जगहों पे उनको विजिट करें, और ये जितनी भी चीजें हैं ये आप लेकर आ सकते हैं और अपना बैक गार्डन बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है जी। ये 30% ऑफ है, विच इज अ बिग डील रियली। तो मजद भाई हम अपनी जो है वो खबरें आप शुरू कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो आज खबर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से ये कनेडियन मिलिट्री जो है ये कहती थी कि भाई हम जो है अब मॉडर्न टाइम्स में हम एंटर हो गए और हमारे पास इक्विपमेंट बहुत एजिंग है, तो हमको अपना इक्विपमेंट अप करने की जरूरत है। और उस सिलसिले में लिबरल गवर्नमेंट बहुत अरसे से कहती थी कि यस हमारी स्पेंडिंग जो है इसमें होगी, लेकिन कुछ हो नहीं रही थी। तो अब आज इन्होंने अनाउंस किया है, ये जो हमारी प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर हैं अब फिलोमीना टासी, और इनके साथ जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारी अनीता आनंद, इन्होंने कहा है जी कि हम अब खरीदेंगे F-35 फाइटर जेट्स।
Yes.
अच्छा, F-35 फाइटर जेट्स जो है ना, बेसिकली माजिद भाई इनका इरादा था कि ये जो यूएस डिफेंस जो कंपनी है ना, लॉकहीड मार्टिन, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ये आर्म्स की कंपनी है और बड़े जबरदस्त ये इनके, तो इनका ख्याल था कि ये इनसे लेंगे, लेकिन अब अमेरिका के साथ कुछ हालात जो है ना कनेडा के, कुछ ऐसे प्यार मोहब्बत के चल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि लॉकहीड मार्टिन इनको ना बोल दे। अच्छा, इन्होंने अब ऑप्शन रखी हुई है, ये जो फिलोमीना टासी और अनीता आनंद साहिबा ने कहा है कि हमने अब ऑप्शन रखी हुई है और जरूरी नहीं है कि हम लॉकहीड मार्टिन से लें, एक और कंपनी है साब, और इससे हम ग्रिपन फाइटर प्लेन्स भी जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अभी तक ये डिसीजन बनाया नहीं है और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ना भी नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं जी प्लान जैसे होता है ना, प्लान ए और प्लान बी, प्लान ए और प्लान बी दोनों रखा हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, कि अगर जो लॉकहीड मार्टिन है अपने ये F-35 फाइटर जेट्स नहीं देगी तो फिर ये साब से ग्रिपन फाइटर्स लेंगे, और ये भी बड़े हाई एंड है, और इसके बारे में वो कह रहे हैं कि हम तकरीबन 88 हमको फाइटर जेट्स चाहिए अपनी एयरफोर्स को।
वाओ,
यस, इट्स अ ह्यूज प्रोक्योरमेंट, और इसके ऊपर तकरीबन 19 बिलियन डॉलर्स जो है कनेडियन गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि फिर कनाडा का जो डिफेंस है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इनकी डिलीवरीज जो हैं वो बताया जा रहा है कि 2025 तक कंप्लीट होएंगी सारी, अगर इनकी डील अभी हो जाती है तो फिर 2025 तक जो है ये तैयारे इनके पास जो है वो आना शुरू होंगे। अच्छा जी, ट्रूडो साहब ने आज जो है बात की है अपने जो G7 के जो है एलाइज, यार दोस्त जिसको हम बोलते हैं आम जबान में, उनको फिर से एक दफा कहा है कि ये देखें रशिया से जो ऑयल और गैस हमें नहीं मिल रही है और बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, उसके रहते हुए हमको अब ज्यादा जो ग्रीनर ऑप्शन हैं उनकी तरफ जाने की जरूरत है। अच्छा, ये जो आज बात कर रहे थे, तो इन्होंने, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने जर्मनी में अर्लियर विजिट किया था, तो जर्मनी में जब चांसलर ओलाफ शोल्स से भी इनकी गुफ्तगू हुई थी, तो उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि भाई हमको जरा क्लीनर एनर्जी की तरफ जाने की जरूरत है और हमको जो है और ऑप्शंस देखने की जरूरत है, हम इतना ज्यादा अगर ये जो रशियन ऑयल एंड गैस पे करेंगे तो जैसे अभी लड़ाई शुरू हो गई है तो हमारी डिपेंडेंस उसके ऊपर बहुत बढ़ जाएगी, तो हमको अपने खुद के ऑप्शंस देखने की जरूरत है। अब इसके ऊपर जो है बातचीत चल पड़ी है यूरोपियन नेशंस के अंदर कि अच्छा ग्रीनर ऑप्शंस और कौन से हो सकते हैं जो कि देखे जाएं ताकि ये जो हमारी रिलायंस है रशियन गैस और ऑयल पे ये कम की जा सके। तो अब आने वाले दिनों में इसके जो अपडेट्स जो जो जैसे जैसे मिलेंगे तो वो हम आपको बताएंगे। मजद भाई ने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जी ट्रूडो गवर्नमेंट के साथ जो ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट है उसकी जो $10 अ डे चाइल्ड केयर की जो डील है,
एन आवर
की जो डील है वो हो गई। आपको पता ही है कि ऑन्टेरियो सबसे आखिर का रह गया था प्रोविंस जिसने ये डील नहीं की थी। इससे पहले जब ये लिबरल गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी तो इन्होंने कहा था कि जी हम सब जो है टेरिटोरीज और प्रोविंसेस,
I'm wrong, you're right, $10 a day.
जी जी $10 a day, हाँ, तो वही तो उन्होंने कहा था जी कि $10 अ डे जो है वो हम करेंगे और ये जो है रिबेट्स आपको प्रोएक्टिव हो जाएंगे अप्रैल 1 से, लेकिन ये शुरू करेंगे फ्रॉम सितंबर 2025 से. और इन्होंने कहा है जी कि ये जो लिबरल गवर्नमेंट ने $30 बिलियन जो रखे थे साइड पे इस सारे के लिए, उसके अंदर ये अपना हिस्सा नहीं बना सक रहे थे क्योंकि ऑन्टेरियो के कुछ एतराज थे कि जी ये कैसे होएगा और कैसे नहीं होगा. अच्छा, इसके अंदर कुछ चीजें ट्वीक की गई हैं और वो ये है कि जैसे दूसरे प्रोविंसेस जो हैं उन्होंने कहा था जी कि ये हमारी 5-year डील होएगी, तो ऑन्टेरियो ने कहा है कि नहीं जी हमारी 6-year डील होएगी और इस तरह की कुछ चीजें हैं. और उन्होंने कहा
जो दूसरे प्रोविंसेस हैं ना तो उनको जो पसंद नहीं आई है.
हाँ,
तो उन्होंने
हाँ,
कहा कि आपने ज्यादा पैसा इनको $13.2 मिलियन दिया
इनको दे दिया है ऑन्टेरियो को.
हाँ, तो ये आपने इनको ज्यादा पैसा दिया है और लेंथ भी ज्यादा बढ़ाई है, तो अब वो
स्यापे डालेंगे
अकॉर्डिंग टू हमारे फोर्ट साहब. वो कहेंगे भाई आपको लड़ना है आप लड़ो, मैंने भी तो पूरे 2 साल लड़ाई.
तो जनाब ये है, तो ये जी बहरहाल ये फेडरल गवर्नमेंट की बहुत अरसे से ये था कि वो चूंकि लोगों के ऊपर अब जो है बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया है, स्पेशली जो चाइल्ड केयर जो सेंटर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और पेरेंट्स के पास कोई चाराकार नहीं होता, जो माँ बाप दोनों काम कर रहे होते हैं उनको वहां पे देना ही होता है ये, तो उसमें इन्होंने कहा था कि भाई हम देखेंगे और फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे. तो आज जो है वहां पे जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी तो वहां पे हमारे फोर्ड साहब भी थे, बाकी ब्रैम्पटन के एमपीज एमपीपीज सारे थे. तो ये काफी खुशी की खबर है कि ये एक ऑन्टेरियो के अंदर बड़ी आई है, लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की एक बात आई है.
एक चीज नोट किया आपने कि ब्रैम्पटन में थे मगर वहां पर डेप्यूटी प्रीमियर थे वहां के वो थे, मगर हमारे जो मेयर साहब हैं वो नहीं वहां थे.
नहीं वो नहीं थे, हालांकि और सारे आए हुए थे. देखें आप वहां पे लिबरल एमपी थे,
ही इज फाइटिंग फॉर द
हाँ वो तो अब नेशनल लेवल की वो कर रहे हैं ना, लेकिन वहां पे मुझे बड़ी हैरत हुई देख के एमपीज भी थे जो लिबरल हैं और एमपीपीज भी थे जो कि कंजर्वेटिव पीसी पार्टीज हैं. यू सी, तो मतलब क्योंकि ऑन्टेरियो के लिए ये बड़ी खबर है तो इसलिए वहां पे थे. अच्छा जनाब, इंडिपेंडेंट एमपीपी जो हैं रैंडी हिलियर, उन्होंने जो है आज पुलिस को ऑटवा में जाके सरेंडर किया है. अच्छा, इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए थे जो हैं ये एमपीपी 64 इयर्स इनकी एज है और इन्होंने खुद ही कहा, रिपोर्टर्स जो हैं उनसे बात कर रहे थे ये पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर, ये एमपीपी हैं लैनार्क फ्रंटेनर किंगस्टन से और इन्होंने कहा जी कि मैं तो ज्यादा मुझे इसलिए ये मेरे पे एतराज कर रहे हैं क्योंकि ये जो फ्रीडम कॉन्वॉय के अंदर जो ये व्यूज पेश कर रहे थे मैं उसके अगेंस्ट बात कर रहा था, तो इसलिए जरा जो है वो मेरे से बड़े ये लोग नाराज हो गए हैं. बहरहाल अगर मेरे पे चार्जेस लगाए हैं तो मैं भाग नहीं रहा, मैं खुद ही आ गया हूं. लेकिन पुलिस कहती है जी कि नहीं, इनके सिर्फ कॉमेंट्स की वजह से हमने इनको चार्ज नहीं किया, इन्होंने जो है पुलिस ऑफिसर्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया काम करने से और इन्होंने रेजिस्टेंस शो की और कुछ के साथ बदतमीजी भी की कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ, तो इसलिए फिर हम जो है इनको हमने मिसचिफ और जो है ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टी ओवर 5000 उसके हम जो है इनके ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं. बहरहाल जी अच्छी बात है कि ये खुद ही आ गए लॉ के सामने और इन्होंने सरेंडर किया, वरना तो फिर बुरी हो जाती चीज जो होती है, अगली हो जाती है अगर आपको पुलिस जाए मारे पीटे कोई करती है या आपको हैंडकफ्स लगाती है, तो अच्छा इन्होंने आके खुद ही वो कर दिया. G7 के अंदर जनाब आज जो जर्मन मिनिस्टर हैं रॉबर्ट हेबक अलोंग विद कनाडा, इन्होंने कहा है जी कि हमको ये जो कहा है रशिया ने कि जो आपकी एनर्जी की नीड्स हैं उसके लिए G7 कंट्रीज अब मुझे रूबल्स में पे करेंगी, तो वो आज इन्होंने रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा जी कि रशिया के साथ G7 ने आज कहा, क्योंकि G7 कंट्रीज के अलावा जो है यहां पे जो EU की कमिश्नर थी वो भी यहां पे इनके साथ थी, उन्होंने कहा जी कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए हैं हमारे साथ ये जो रशिया है, तो ये अब अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमारे घरों को हीट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और जो हमारे जो इंडस्ट्री है उसको पावर देता है, और ये था कि आप डॉलर्स में पेमेंट करेंगे, तो ऑल ऑफ अ सडन अगर ये कह रहे हैं कि जी आप पेमेंट्स जो हैं उसमें रूबल्स में करेंगे तो हम नहीं करेंगे, वही जो डील है यूरोज और डॉलर्स उसी के अंदर जो है इनकी पेमेंट्स जारी रहेंगी जितनी भी रह सकती हैं, वरना तो ये सारी अब सैंक्शन लगा दी हैं और अब इनके साथ खत्म कर रहे हैं ये सारी डील. लेकिन फिर भी यहां पे जो G7 है उन्होंने कहा जी कि ये हम जो है इसकी इतला जो है जर्मन एनर्जी मिनिस्टर ने रॉबर्ट हेबक ने कही कि G7 सारा इसके ऊपर राजी है कि वो सिर्फ वही पेमेंट्स करेगा जो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट है जी. तो हम चलेंगे व्हाट इज ऑन द पेपर अपनी मर्जी नहीं चलाने देंगे इनको। अच्छा जी, अरफा बाजी ने अभी जो बात की थी कि ये चाइना के अंदर अब मैस जो है लॉकडाउन शुरू हो गए हैं शंघाई के अंदर, उसकी वजह ये है कि जाहिर है कि बहुत ज्यादा जो है वायरस फैलना शुरू हो गया है, लेकिन इट इज वेरी वेरी हर्टिंग और हर्टफुल टू चाइना, इसलिए कि आपको पता ही है कि शंघाई जो है चाइना का फाइनेंशियल हब है
और 26 मिलियन,
हाँ जी, ओवर 26 मिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं, यानी पूरा कनाडा इनके एक शहर में ही रहता है। कनाडा की 36 है, इनकी 26 है, एक ही मिलियन जो है वो क्या 10 मिलियन कम है शायद, तो बस इतना ही कम है जी, तो तकरीबन पूरा मुल्क ही एक शहर में रहता है, एक शहर में रहता है। तो अब इनके कंसर्न बढ़ गए हैं, लेकिन आज चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा है कि 2019 के आखिर में जब वुहान के अंदर भी जब इस तरह की बात आई थी कि ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो 76 डेज के लिए पूरा वुहान भी हमने शट डाउन कर दिया था और वुहान में भी 11 मिलियन से ज्यादा पीपल है, तो कंप्लीट शट डाउन था उस शहर के अंदर। तो वो कह रहे थे कि जी इसमें हम जो है लॉकडाउन करते हैं और इसीलिए हमारा बचाव होता है। तो वो अच्छा, वुहान जो था वो चूंकि फाइनेंशियल कैपिटल नहीं था तो इसलिए लोगों के इतने कोई एतराज भी नहीं आए थे, अब ये चूंकि फाइनेंशियल कैपिटल है तो इसके ऊपर काफी अब जो है वहां पे अनरेस्ट है कि भाई चीजें कैसे चलेंगी, क्योंकि कब खोलेंगे फिर आप, खोलेंगे कब, खोलने कब के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहरहाल चाइना कहता है जी हमारा कंट्रोल करने का यही तरीका है, ठीक है जी, ऐसे। अच्छा, अल सल्वाडोर में जनाब ओवर द वीकेंड बहुत ही ज्यादा जो है वो किलिंग्स और जो है वो शूटिंग्स और वो होती रही हैं, और ये दो दो जगहों के ऊपर, एक अल सल्वाडोर में और एक मेक्सिको में। तो पहले हम अल सल्वाडोर की आपको बताते हैं, यहां पे प्रेसिडेंट नायब बुकेले जो हैं उन्होंने फिर फाइनली जब ये इतनी ज्यादा शूटिंग्स और किलिंग्स बढ़ गई वीकेंड पे एक्सक्यूज मी, तो इन्होंने फिर अपनी कांग्रेस से पूछा कि भाई अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दें। तो अल सल्वाडोर में इस वक्त मिलिट्री जो है वो सड़कों के ऊपर है और यहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। 14 लोग फ्राइडे को मारे गए थे, 62 लोग जो हैं उनको सैटरडे को मारा गया था, एंड सिमिलर नंबर ऑन संडे एज वेल बिफोर दे अनाउंस स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अल सल्वाडोर। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि ये जो है हमको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन ये डेफिनेटली गैंग वॉर है, तो गैंग वॉर के अंदर जो है ये ओपन सड़कों के ऊपर निकल निकल के एक दूसरे के मेंबर्स जो हैं मार रहे हैं। अच्छा, मेक्सिको के अंदर भी जी एक मैस शूटिंग हुई है और इस मैस शूटिंग के अंदर तकरीबन 20 लोगों को मार दिया गया है, और ये हुआ था लास टिंजास का जो इनका इलाका है मिको कैन स्टेट के अंदर वहां पे। तो यहां पे भी जो प्रेसिडेंट आंड्रे मैगवेल हैं उन्होंने उनसे मैनुअल जो है उनसे पूछा कि भाई ये भी जो है ये भी कोई गैंग वॉर तो नहीं है, उन्होंने कहा कि अब ये तो मुझे लग रहा है कि गैंग वॉर है क्योंकि जिस तरह से गनमैन बंदूकें लेकर निकले हैं और उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है। अब उस इलाके में जहां पे इन्होंने फायरिंग की है वहां पे क्या उनके कोई गैंग के मेंबर्स थे कि नहीं थे, क्योंकि ये इलाका जो है ये स्टेट जो है मिकोकॉन की ये काफी बदनाम है, ये टर्फ है गैंग वॉर्स के लिए, तो यहां पे होती रहती हैं। तो प्रेसिडेंट मैनुअल ने कहा है कि अब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा वाकई गैंग वॉर थी कि नहीं, और ये जो है पुलिस जो है बहरहाल उसने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है और वो कर रही है। और यहां पे भी 20 लोग आज और इससे पहले भी कुछ दिन पहले जो एक शूट आउट हुआ था जस्ट अ फ्यू डेज बैक उसमें भी 17 लोग जो थे वो मारे गए थे। तो ये मेक्सिको के अंदर भी गैंग वॉर जो है काफी ये चल रही है। अच्छा जनाब, हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि टर्की काफी कोशिश कर रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत हो जाए, तो आज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के सर्जे लैवरॉव उन्होंने कहा है कि येस, आई मीन एज वी स्पीक इस वक्त वो जो लीडर्स हैं वो टर्की में पहुंच रहे हैं और फेस टू फेस मीटिंग जो है वो हो सकती है। तो अगर तो वो आज पहुंच गए टर्की के अंदर और जैसे कि सर्जे लेवरॉव ने कहा है कि फेस टू फेस बात होगी जेलेंस्की साहब की और पुतिन साहब की, फिर तो चीजें जो है सेटल होंगी। लेकर उन्होंने एक जो अच्छी न्यूज बताई है लेवरॉव साहब ने, उन्होंने कहा है कि इनकी बहुत सारी बातों के ऊपर सहमति हो गई है, अग्रीमेंट हो गया बहुत सी बातों पर, तो अब सिर्फ फेस टू फेस बैठ के पेपर के ऊपर साइन करना खाली रह गया है। तो टर्की इसको अपनी जाहिर है कि बहुत बड़ी वो जो है वो जीत समझ रहा है, डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि वो कह रहा है जी कि इसने जो तैयब अर्दुगान साहब हैं टर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने बात की थी दोनों से ही, जेलेंस्की से भी और पुतिन साहब से भी, और उनको कहा था कि भाई हम बीच में ये जो है आपका सीज फायर कराने को तैयार है। तो अब जो निगोशिएटर्स हैं अगर ये लीडर्स नहीं भी आते हैं तो निगोशिएटर्स एटलीस्ट दोनों साइड्स के टर्की में आ सकते हैं और बात कर सकते हैं और इन दोनों प्रेसिडेंट्स के बिहाफ पे साइन कर सकते हैं पेपर्स पे, ताकि यहां पे जो है, क्योंकि ये फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स जो आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें काफी उनको उम्मीद नजर आ रही है कि चीजें अच्छाई की तरफ जाएंगी। बाइडन साहब ने जनाब आज अपना एक जो है बजट ब्लू प्रिंट जो है वो एक बताया है कि क्या हो सकता है बजट। वो जो बजट ब्लू प्रिंट बताया है उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी अमीर इस मुल्क के लोग हैं वो पैसे शैसे देते नहीं हैं, तो उनके ऊपर जो है टैक्सेस जरा ज्यादा लगाने की जरूरत है और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर कम करने की जरूरत है, ताकि ये जो फेडरल डेफिसिट्स हैं इनको कम किया जा सके। और हम ज्यादा पैसे लगाना चाहते हैं पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ के, जो पब्लिक हेल्थ एंड हाउसिंग के ऊपर। और इन्होंने कहा है जी कि तकरीबन 5.8 ट्रिलियन की हम फाइनेंशियल स्पेंडिंग करना चाहते हैं इन फिस्कल 2023, और हमारा इनका जो डेफिसिट है ये ऑलरेडी टच कर रहा है 1.15 ट्रिलियन को। लेकिन फिर भी इन्होंने मैसिव चीजें जो है 795 बिलियन जो है डिफेंस के लिए, 915 बिलियन फॉर डोमेस्टिक प्रोग्राम्स जिसके के अंदर ये सारे हाउसिंग और ये और वो सारे शामिल हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर और जो हायर टैक्सेस हैं वो कह रहे हैं जी कि ये इंक्रीज किए जाएंगे बाय, और उससे जो कलेक्शन होगी तकरीबन 361 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। तो ये सारा जी इन्होंने बड़ा ही एम्बिशियस एक प्रोग्राम जो है रोल आउट किया है। तो
मगर उसके अंदर ये है कि जो जो लोग के घर जो हैं 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा हैं उन पे 20% टैक्स लगेगा।
टैक्स लगेगा
इफ 20 मिलियन डॉलर, इफ यू हैव अ हाउस फॉर 20 मिलियन डॉलर्स,
या
20% टैक्स लगा दें आप,
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इन्होंने कहा है जी कि मैंने ये भी प्रपोज किया है कि जिन लोगों की 400,000 से कम है अर्निंग है उनके ऊपर भी जो है ज्यादा टैक्सेस उनके हाइक ना किए जाएं। तो मैंने कहा भाई
400,000
रियली, ठीक है भाई, वड्डा मुल्क है, ज्यादा लोग हैं जी, पैसे ज्यादा कमाते हैं।
आई एम ग्लैड दैट आई एम नॉट लिविंग इन स्टेट्स,
लेकिन इतने पैसे भी तो आप कमाते हैं माजिद भाई,
वही तो मैं कह रहा हूँ, आई एम ग्लैड दैट आई एम नॉट लिविंग देयर
जी।
ट्रूडो साहब दैट्स ओके,
नहीं तो ट्रूडो साहब दे क्या रहे हैं, दाने दे रहे हैं, इधर कोई जो है वो उनसे कार ही नहीं चल रहे हैं, तो व्हाट इज दिस माजिद भाई, ये
बटाला सुपर मार्केट की बात कर चलूं। बटाला सुपर मार्केट 200 मार्कम रोड, मार्कम एंड एग्लेटन के कॉर्नर पर इन स्कार्बरो। आप इनकी वेबसाइट पर चले जाइए www.shopbatala.com पे, बड़ी जबरदस्त सेल लगाइए, सालाना एक सेल होती है इनकी बस, और वही सेल लगी हुई है बटाला सुपर मार्केट पे, 25 तारीख को शुरू हुई थी, अप्रैल 10 तक है, बहुत ज्यादा पैसा सेव कर सकते हैं आप भाई। आप एक दफा जाके विजिट जरूर करें, अपने पूरी की पूरी शॉपिंग यहां से कर लीजिए, एंड यू गोना सेव अ लॉट ऑफ मनी। बटाला सुपर मार्केट 200 मार्कम रोड, मार्कम एंड एग्लेटन के कॉर्नर पर, 4162643111, 4162643111 इनका फोन नंबर है। प्रोजेक्ट रमदान की बात कर चलो, प्रोजेक्ट रमदान एवरी रमदान जो है मुस्लिम वेलफेयर सेंटर आपके लिए नीडी लोगों के लिए बास्केट बनाता है, फूड बास्केट्स। सो फार दे हैव मेड 36,000 फूड बास्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। अब जो है इस साल भी कॉस्ट इसकी $60 है, वैल्यू तो इसकी बहुत ज्यादा है मगर कॉस्ट $60 है। अगर आप $60 इनको डोनेट करते हैं तो वो एक फैमिली को दे सकते हैं जो प्रिटी वेल पूरे रमजान उसको खा सकते हैं, मींस के डिपेंडिंग ऑन द फैमिली 15 to 20 और 15 to 30 डेज वो उसको यूज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा काम है, अपनी जकात फितरा और जितने खैरात जकात वगैरह है आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को दीजिए साहब। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू अल्लाह। इनकी वेबसाइट पर चले जाइए www.mwcanada.org या आप जाइए 1416-754-8116, इनका फोन नंबर है।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
जी
हाँ जी, अच्छा जनाब, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो हैं डेविड कॉर्टर, उन्होंने कहा है जी कि हमको सबूत मिल गए हैं, हमारे पास बहुत सारी कहानियां हमारे पास आ गई हैं कि ये जो 2020 का जो इलेक्शन का जो ये कैपिटल हिल के ऊपर जो कुछ ये हंगामे हुए थे
जनवरी 6 को
उसको स्टॉप करने के लिए कि रिजल्ट्स ना आए, तो ट्रंप साहब जो हैं हमें लगता है कि इन्होंने क्राइम कमिट किया होएगा। वो तो उनके वर्ड्स थे, मोर देन लाइकली कि इनका जो है वो इन्होंने स्टॉप करने की कोशिश की है उसको, तो उसके लिए उन्होंने जब रूलिंग दी है तो उन्होंने कहा जी कि हमको एटलीस्ट 100 ईमेल्स जो हैं ट्रंप साहब के एडवाइजर जॉन ईस्टमन की, वो हमने जो है कमेटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए दी है, और हमें लगता है कि ट्रंप साहब जो हैं इन्होंने अटेम्प्ट किया था ओवरटर्न करने का प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को, और हमारे पास अब काफी एविडेंस है और उस एविडेंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब ये जनाब बड़ी सख्त बात है, और आपको पता ही है कि कार्टर साहब बड़े ही एक मजबूत किस्म के जज हैं, और इनको आपको पता है कि नॉमिनेशन इनकी बिल क्लिंटन साहब ने की थी और उस वक्त से कोई इनको हिला नहीं सका है। तो ये जनाब जो हैं इन्होंने अब कहा है कि भाई इनके ऊपर आप बताएं, ये लगाएं कुछ, ये जो जॉइंट सेशन है ये फाइंड आउट करें कि इन्होंने क्यों ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है सारी। तो इनके ऊपर अब देखेंगे अब क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। रॉयटर्स के मुताबिक जनाब, ये रॉयटर्स में मैंने खबर देखी और ज्यादा जगह नहीं देखी, रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने आज जो अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट है उसने कहा है कि जो भी कोई गवर्नमेंट की ऑफिस में आएगा वो दाढ़ी लेकर आएगा, अगर उसकी दाढ़ी नहीं होगी तो वो गवर्नमेंट के ऑफिस में काम नहीं कर सकेगा। और उन्होंने आज जो है वहां पे लोग खड़े किए हुए थे गवर्नमेंट के ऑफिसेज के बाहर, और उन्होंने वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे थे अंडर ये
गाड़ियां चेक कर रहे थे।
हाँ, गाड़ियां चेक कर रहे थे। मिनिस्ट्री फॉर प्रोपगेशन ऑफ वर्चू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस जो है उसके बंदे जो है पेट्रोल कर रहे थे सारी मिनिस्ट्रीज के बाहर, और वो देख रहे थे कि लोगों के कपड़े कैसे हैं और उनकी शक्ल कैसी है। अगर उनके पास दाढ़ी नहीं थी और उन्होंने जो कपड़े ये जिस तरह के पहनते हैं शलवार कमीज ढीले ढाले ये नहीं थे और टर्बन नहीं था इनका, तो उनको ये जो है वापस भेज रहे थे और उन्होंने कहा जी कि आपका दाढ़ी होना चाहिए और इस तरह के कपड़े होने चाहिए, शलवार कमीज और आपका पगड़ी, और आप अगर आएंगे तो आप प्रॉपर टाइम्स पे प्रेयर्स करेंगे और इस तरह की चीजें। तो अब इसके ऊपर तो जनाब फिर से वेस्टर्न